मिट्टियां और गिट्टियां। ये एक व्यंग्यात्मक रचना है जो सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की है, जिन्होंने यह जो रचना है इसके माध्यम से जो दो पीढ़ियों का संघर्ष है उसके बारे में उन्होंने व्यंग्य लिखा है। और हमारी दो पीढ़ियां हैं, एक पीढ़ी जो वयोवृद्ध हो चुकी है, जो बड़ी हो चुकी है, अब उसके शरीर में, उसके दिमाग में कोई इस तरह की शक्ति नहीं बची है कि वह अपने पहले के जो पूर्व धर्म है, जो पहले के काम है, उनको वह उसी तरीके से उतनी ही शक्ति से, उतनी ही उत्साह से वह कर सके। एक ये पीढ़ी है, और इस पीढ़ी ने अपने समय में बहुत यश भी अर्जित किया, बहुत अर्थ भी अर्जित किया है, और बहुत इसका नाम भी हुआ है, यश भी में से बहुत सारा मिला है। चूंकि ये पीढ़ी अब वृद्ध हो रही है तो चाहिए समय के अनुसार व्यवहार करे और अपना स्थान जो है वो अगली पीढ़ी को दे, ताकि जो जिस पथ पर उसने अपने कार्यों को बढ़ाया है उसी पथ पर वह अगली पीढ़ी भी अपनी तरफ से योगदान दे और उन कार्यों को और आगे बढ़ाए। लेकिन जो हमारा मोह है वो हमें छोड़ता नहीं है, तो यह जो पीढ़ी है ये उस मोह से बंधी हुई है और ये चाहती है कि उसी का महत्व रहे, उसी को कहना चाहिए कि यश मिलता रहे, उसी की ही बात होती रहे, और बिल्कुल कहना चाहिए कि ध्यान के केंद्र में सिर्फ वही जो वृद्ध पीढ़ी है वही रहे। तो इसी जो दो पीढ़ियां हैं ये जो, इनमें जो संघर्ष है उसी पर आधारित ये व्यंग्य है। और शुरू में जो हमारी वृद्ध पीढ़ी है, जो हमारी पहले बड़ी पीढ़ी है, उसने ये स्वीकार कर लिया कि वे बैठ जाएंगे और वे देवता बन जाएंगे और वहाँ उन्हें भोग भी मिलेगा, उनका उनकी नाम उनके नाम की अर्चना भी होगी, उन्हें सम्मान भी मिलेगा, उन्हें तरह तरह के भोग भी मिलेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि उन्हें सब तरह के सुख साधन मिलेंगे। सभी सुख साधनों के बावजूद भी वे इस बात को कहना चाहिए कि हजम नहीं कर पाए कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वह किस तरह से आनंदित हो रही है, क्योंकि अब उनका आनंद लेने का समय नहीं है। तो ईर्ष्या के भाव से प्रेरित होकर उनमें फिर वह संघर्ष हो जाता है और अंततः वह युवा पीढ़ी जो उन्हें बहुत अच्छे ढंग से उन्हें सम्मान भी दे रही थी, उन्हें एक यथास्थान उसको दे दिया था और वह सभी कहना चाहिए कि सुख सुविधाएं उन्हें दी थी जिसके वे अधिकारी थे, वह उन सभी सुविधाओं से उन्हें वंचित करने पर उतारू हो जाती है। और जो एक आपसी कहना चाहिए सद्भाव, एक सम्मान और एक आपसी जो मेल जोल का जो एक वातावरण दो पीढ़ियों के बीच होता है वह नष्ट हो जाता है। इस पर आधारित ये हमारा व्यंग्य था। हमने पिछले कार्यक्रम में भी चर्चा की थी कि व्यंग्य किसे हम कहते हैं। जब हम एक साधारण सी बात कहकर उसका अर्थ उससे कहीं अधिक प्रभावशाली रूप में जब हम व्यक्त करना चाहते हैं तो वहाँ ये व्यंग्य आता है। तो वहाँ अगर किसी तरीके से हमारी कोई विसंगति है, सामाजिक है, या किसी भी तरीके से हम किसी ऐसी कहना चाहिए कि एक ऐसी अनियमितता या ऐसे विरोधाभास पर अपनी अभिव्यक्ति बहुत ही सशक्त रूप में करना चाहते हैं तो हम व्यंग्य का इस्तेमाल करते हैं। तो हरिशंकर परसाई जी इसमें बहुत अधिक निपुण व्यंग्यकार माने गए हैं और बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। और बहुत ही आश्चर्य की बात है कि उन्होंने साहित्यकारों की जो वृद्ध पीढ़ी है उसी पर ही उन्होंने ये व्यंग्य लिखा है। तो अपने पर व्यंग्य लिखना ये बहुत ही बड़ी बात है, जैसे खुद पर हंसना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही कहना चाहिए कि टेढ़ा काम है, लेकिन अगर कोई ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो वाकई उसे कहना चाहिए कि बहुत ही निपुण है। तो इस तरह से हरिशंकर परसाई जी एक साहित्यकार के रूप में, एक व्यंग्यकार के रूप में अत्यंत निपुण लेखक माने जाते हैं और उन्होंने यहाँ पर जिस तरह से इस व्यंग्य को प्रस्तुत किया है हम पूर्ण रूप से बहुत अच्छे ढंग से समझ पाए हैं कि यहाँ जो ये पीढ़ियों का संघर्ष है वो किस तरह से हमें झकझोर कर गया है। व्यंग्य की सबसे अच्छी जो कहना चाहिए विशेषता है वो यही है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपको झकझोर देगा इस तरह से कि आप सोचने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि क्या सचमुच इस बारे में इतना सब सोचने की और कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर कोई इस तरह की महत्वपूर्ण इस तरह से विसंगति ना हो, कोई सामाजिक कहना चाहिए कि कोई अंतर विरोध ना हो, तो व्यंग्य हो ही नहीं सकता। सामान्य परिस्थितियों में साहित्य ही नहीं हो सकता। तो साहित्य के लिए कुछ न कुछ इस तरह से हमें सामग्री चाहिए जिस पर हम अभिव्यक्ति दे सकें। तो यहाँ पर उन्होंने जो व्यंग्य लिखा है वो बहुत ही चमत्कार उत्पन्न कर रहा है। जीवन की सच्चाई तो वह उत्पन्न कर ही रहा है, लेकिन एक चमत्कार भी उत्पन्न कर रहा है और कहीं ना कहीं हमें सोचने के लिए बाध्य कर रहा है कि क्या हम, अगर हम युवा पीढ़ी से हैं, तो क्या हमारा कर्तव्य बस इतना है कि हम पुरानी पीढ़ी से उसका स्थान छीन लें या उसे उसके यथोचित सम्मानित स्थान पर उसे बिठाएं, उसको सम्मान दें, पुरानी पीढ़ी से सीखें और तब आगे बढ़ें। तो ये बहुत ही ज़रूरी सी बात है। तो यहाँ आज हम बात करते हैं कि इस व्यंग्य में क्या क्या खास बातें हैं जिस पर हमें विचार करना चाहिए। जैसा कि हमने बात की कि इस व्यंग्य का जो कथ्य है, क्या कहा गया है, हमने बात ही की है कि यह जो पीढ़ियों का संघर्ष है उसको उजागर करता है और जो नई पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी से ज़बरदस्ती या कहना चाहिए बलपूर्वक अपना अधिकार लेना चाहती है, और पुरानी पीढ़ी यह समझती है कि ये दायित्वहीन है नई पीढ़ी और इसको दायित्व देना सही नहीं है। तो पुरानी पीढ़ी को यह भय रहता है कि कहीं ना कहीं उसका एकाधिकार समाप्त हो जाएगा और एकाधिकार समाप्त होने के बाद उसका महत्व ही समाप्त हो जाएगा। तो ये जो पुरानी पीढ़ी की लालसा है या झूठा डर है वो किस तरह से समाज की जो नई पीढ़ी है उसकी प्रगति में, उसकी उन्नति में, उसके विकास में, उसकी स्वतंत्रता में और उसकी सुख समृद्धि में किस तरह से प्रभाव डालती है, ये समझने की बात है। और जिस समाज में ऐसी पुरानी पीढ़ी होगी जो नई पीढ़ी को देखकर ईर्ष्या अनुभव करेगी या ऐसा सोचेगी कि उसे कहना चाहिए अंग्रेजी में एक शब्द अंडर एस्टिमेट करेगी, उसे लगेगा कि हमारी जो पीढ़ी थी वो तो बहुत योग्य थी और उसने तो बहुत सारा काम भी किया और यश भी प्राप्त किया, लेकिन ये नई पीढ़ी के बस की बात नहीं है। कई बार आप भी देखते होंगे कि जब भी कुछ लोग अलग अलग मतलब उम्र में जिनके काफ़ी अंतर है वो बात करते हैं तो ये बात आती है कि जो ये नई पीढ़ी है या ये जो नई जनरेशन है ना, ये बच्चे इसी तरह के से सोचते हैं, इनमें मूल्य नहीं है, ये काम करने मेहनत करना नहीं जानते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम अपने ही पूर्वाभासों में लगे हुए, हम पहले से ही हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि ये ऐसा ही है। हम ये जानने की या समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि नई पीढ़ी हमारी ही है, वो कहीं और से उत्पन्न नहीं हुई है, हम ही उसको जन्म देने वाले व्यक्ति हैं। तो उसमें और हमने ही उस पीढ़ी का लालन पालन किया है, तो उसे हमने ही संस्कार दिए हैं, तो किस तरह से यह पीढ़ी इतनी मूल्यहीन हो सकती है, आखिर पाला हमने ही है इस नई पीढ़ी को। तो कहीं ना कहीं ये जो समझ का अंतर है वो ही ये संघर्ष उत्पन्न कर रहा है। और जैसे परसाई जी ने इस व्यंग्य की का जो शीर्षक लिया है वो लिया है पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ। पीढ़ियाँ जो हैं वो उम्र का अंतर बताती हैं, कि देखिए ये नई पीढ़ी है, इसके पास कोई अनुभव नहीं है, ये तो नई बिल्कुल कुछ नहीं जानती है, अभी अभी तो ये उभरी है और अभी अभी इसमें सब कुछ कर गुजरने की जो वो मादा है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा, क्योंकि वो कहना चाहिए वो गंभीरता नहीं है, तो ऐसा माना जाता है। पुरानी पीढ़ी में जैसे हमारे माता पिता हैं या गुरु आदि आते हैं, और नई पीढ़ी में युवा हैं, शिष्य हैं, हमारी संतानें हैं, वे आती हैं। तो हर पीढ़ी की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपना दर्शन होता है, अपनी मूल्य परंपरा होती है, और जो पीढ़ी के बदलते ही नया रूप ग्रहण करती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बहुत छोटे थे तो हमने भी नहीं देखी थी, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया, समाज का स्वरूप बदलता गया, हमने उन सभी मूल्यों को, उन सभी रीति रिवाजों को, उन सभी विश्वासों को ग्रहण किया और उसके बाद अपनी सोच बनाई। तो ज़्यादातर जो ये पीढ़ी है, इसका जो क्रम है वो 12 से 15 साल में बदलता है, क्योंकि इतना समय काफ़ी है जब छोटा बच्चा युवा बन जाता है, तो वहाँ पर ये पीढ़ी का अंतर आ जाता है, तो इसे हम पीढ़ी कहते हैं। और गिट्टियाँ, गिट्टियाँ यानी छोटे छोटे पत्थर या किस इसी प्रकार के कोई अन्य कोई वस्तुएं, कोई तत्व, गिट्टियाँ लकड़ी के टुकड़ों को भी हम कह देते हैं, तो जो बिल्कुल कहना चाहिए कि अनुपयोगी जो चीज़ें हैं। तो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को गिट्टियाँ मारती है, पत्थर मारती है, यानी उसे परेशान करती है, प्रताड़ित करती है, और नई और पुरानी पीढ़ियों में कोई अपने आप को कमतर नहीं मानना चाहता, सब ये कहते हैं कि मैं बेहतर हूँ पुरानी पीढ़ी से। नई पीढ़ी कहती है मैं पुरानी पीढ़ी से बेहतर हूँ, और पुरानी पीढ़ी कहती है कि नई पीढ़ी में तो वो बात नहीं जो हम में थी। तो ये जो खुद को श्रेष्ठ बताने का और सिद्ध करने का जो एक की जो एक होड़ है, एक जो स्पर्धा है, उसमें कहीं ना कहीं हम आपसी मेलजोल और स्नेह हम भूल जाते हैं। हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद को सही सिद्ध करने में हम आपसी संबंध खराब कर लेते हैं। तो यहाँ ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई भी पीढ़ी अपने आप में पूर्ण नहीं है। पुरानी पीढ़ी के पास जहाँ गंभीरता है, उसका अनुभव है, वहीं नई पीढ़ी के पास नए विचार हैं, काम करने का नया जोश है, नई उमंग है, और अगर पुरानी पीढ़ी उसे अपने अनुभव और अपनी गंभीरता से उसे पाले पोसे, उसका मार्गदर्शन करे, तो एक बहुत ही अच्छा समाज हमारा समाज बन सकता है। तो इस बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो ये दोनों पीढ़ियों का जो संघर्ष है, वो विचार के स्तर पर या सोच के स्तर पर लगातार चलता रहता है, तो इसे ही लेखक ने गिट्टियाँ कहा है। तो अपने विचारों को दूसरों पर लादने के कारण ये जो शीर्षक निकल कर आया है वो ये है, पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ। तो अपने आप में देखा जाए तो ये शीर्षक जो है बिल्कुल सार्थक बन पड़ा है, और हमने ये पाठ पढ़ा और इस बात को बहुत अच्छे से हमने जाना भी कि इस व्यंग्य के लिए इससे बेहतर शीर्षक और कोई नहीं हो सकता था। तो कहीं ना कहीं ये पाठ सिर्फ हमारे पढ़ने के लिए ही नहीं है, या जैसे हम इस पाठ को पढ़ लें, इस पर चर्चा कर लें, फिर हम इसके कुछ प्रश्न कर लें, कुछ गतिविधियां कर लें और हम अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाएं कि अब ये हमने पाठ कर लिया है। इस पाठ से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे श्रोताओं में ऐसे भी लोग होंगे जो पुरानी पीढ़ी को दर्शाते होंगे, उसका प्रतिनिधित्व करते होंगे, और कुछ बच्चे भी होंगे जो नई पीढ़ी के होंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो अलग अलग पीढ़ियों के हैं, जिनके लालन पालन की स्थितियां जो हैं वो बिल्कुल अलग रही हैं, फिर भी हम एक ही मानव जाति के हैं, एक ही समाज के हैं, और इस नाते हम दोनों पीढ़ियों का ये कर्तव्य बनता है कि हम मिलकर एक दूसरे के पूरक बने। जहाँ नई पीढ़ी कुछ सीखने में कमतर साबित हो रही है, वहाँ पर पुरानी पीढ़ी को चाहिए कि वह बड़प्पन दिखाए और नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करें। और जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पुरानी पीढ़ी की जो शारीरिक क्षमता है वो कम हो रही है और वह कुछ काम ऐसे हैं कि जो वह नहीं कर सकती है या उसे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ पर नई पीढ़ी को चाहिए कि वहाँ उसकी सेवा करें और उससे आशीर्वाद लें, उसका ध्यान रखें और उसको इस तरह से कहना चाहिए कि उसका उसकी देखभाल करती रहे पुरानी पीढ़ी की, कि वह सदैव नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करते रहें। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हम इस पाठ से सीख सकते हैं, और हमारे समाज में जो कहीं ना कहीं इसका अभाव है, बहुत जगह परिवारों में समाज में इस तरह का जो माहौल देखने को मिलता है, वहाँ ऐसा लगता है कि अगर हम ये बात समझ लें तो बहुत सारा संघर्ष हमारा समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ये इस व्यंग्य रचना की जो भाषा शैली है उसके बारे में। ये तो हमारी बात स्पष्ट हो ही गई है कि ये व्यंग्य रचना है, और व्यंग्य रचना किसी भी बात को सीधे सीधे न कहकर उचित शब्दों मुहावरों द्वारा चमत्कार उत्पन्न करके कही गई बात होती है, उसे हम व्यंग्य कहते हैं। तो पीढ़ियां और गिटियां जो ये व्यंग्य है, एक ओर तो वृद्धों की बढ़ती उम्र लेकिन मन में दबी हुई इच्छाओं को बता रहा है, और दूसरी ओर अगली पीढ़ी के जो युवा हैं उनके द्वारा जीवन की जो सुविधाएं हैं, साधन हैं, उनके कहना चाहिए कि उनके भोग के प्रति माफ कीजिएगा, पुरानी पीढ़ी के आक्रोश को बता रहा है। तो इस तरह से ये वर्चस्व को लेकर जो संघर्ष चल रहा है उसके बारे में बताया गया है। जैसा कि हम पढ़ते हुए भी देखते हैं कि ये जो व्यंग्य है ये बहुत ही आम बोलचाल में लिखा गया है, बहुत ही आम बोलचाल की भाषा है। और अगर हमारे जो शिक्षार्थी हैं वो इस पाठ को बिना किसी शिक्षक की सहायता के खुद भी पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही होगी। तो बहुत ही आसान कहा जाने वाला, आसानी से समझा जाने वाला ये पाठ है, बोलचाल की भाषा है। वाक्य बहुत छोटे छोटे हैं। अधिकांशतः क्या होता है कि जब हमारे वाक्य लंबे होते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षार्थियों के मस्तिष्क से भाव छूट जाता है, समझते समझते वो भाव फिसल जाता है कि वो कहना क्या चाहते थे। लेकिन छोटे वाक्यों का सबसे उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भाव पकड़े रहते हैं ये वाक्य, और ये भाव अगर ये वाक्य अगर छोटे छोटे संवादों के रूप में लिखे गए हैं फिर तो कहना ही क्या, मतलब बहुत ही रोचक बन जाते हैं छोटे छोटे संवाद। तो जो ये संवाद हैं इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लगेगा कि अनावश्यक है, बिल्कुल सटीक है, विषय के अनुरूप है, विषय से ही संबंधित है। बिल्कुल थोड़ा सा भी भटकाव आपको संवादों में वाक्यों में नहीं मिलेगा। तो और कहीं कहीं तो आप देखेंगे कि लेखक ने बहुत ही हाजिर जवाबी, हाजिर जवाबी का मतलब जैसे ही आपके सामने किसी ने प्रश्न किया आपने तुरंत उत्तर दिया। जब वृद्ध इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगर उन्हें देवता बना दिया गया तो वे अपनी चिंताएं जो थी वे नई पीढ़ी के साथ साझा कर रहे थे और वो लगातार प्रश्न कर रहे थे, और नई पीढ़ी तुरंत उनके प्रश्नों का उत्तर और बहुत ही अच्छा उत्तर दे रही थी। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा। जैसे उन्होंने कहा कि वृद्धों ने कहा कि और हमारे भोग का क्या होगा, तो तुरंत नई पीढ़ी का उत्तर आया, हम आपके भोग का भी प्रबंध करेंगे, रोज हम पकवानों के थाल लेकर आएंगे। तुरंत फिर से प्रश्न आया, हमें श्रद्धा भी तो चाहिए, उसका क्या प्रबंध होगा। तुरंत उत्तर आता है, हम रोज आपकी आरती करेंगे और आपके चरणों पर मस्तक रखेंगे। तो देखने की बात यह है कि कितना सामान्य सी शैली में लिखे गए जो वाक्य हैं, उसमें नई पीढ़ी की हाजिर जवाबी कितने अच्छे ढंग से व्यक्त हो रही है। उन्होंने बताया है कि जैसे ही कि आपके भोग की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम पकवानों की थाल भी लेकर आएंगे, और आपकी जहाँ तक श्रद्धा की बात है तो हम आपकी आरती करेंगे, आरती से अधिक श्रद्धा तो क्या होगी, और हम आपके चरणों पर मस्तक भी रखेंगे, तो हम आपको बहुत अधिक सम्मान देंगे। तो इस तरह से इन्होंने जैसे आगे चिंता की कि हमारे अर्थ का क्या होगा। अब धन का भी इनको मोह है पुरानी पीढ़ी को, तो इस बारे में भी उन्होंने उत्तर दिया नई पीढ़ी ने कि आपकी रॉयल्टी हम मंदिर में ही पहुंचा दिया करेंगे, कि हमें आपके आपका जो पैसा है हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हम आपकी जो रॉयल्टी, जो आपकी लिखी हुई पुस्तकों से जो रॉयल्टी मिल रही है, हम आपके मंदिर में ही पहुंचा देंगे, और आपको हम हर पाठ्य पुस्तक में रखवाएंगे। पाठ्य पुस्तक में जो पाठ होते हैं उसमें विभिन्न लेखकों के ही तो पाठ हैं, तो वहाँ हम आपको इतना सम्मान दिलाएंगे कि आपके जो लिखी हुई रचनाएं हैं उन्हें हम पाठ्य पुस्तक के जो पाठ्यक्रम है उसमें हम शामिल कराएंगे, और अगर आपकी रॉयल्टी का जो पैसा है, अगर कोई प्रकाशक कोई पब्लिशर देने में आनाकानी करता है कि नहीं अब तो वृद्ध हो गए और अब हम उन्हें ये रॉयल्टी नहीं देंगे, तो उसे हम ठीक कर देंगे। ठीक करने का मतलब यह है कि हम हर तरीके से आपके सब हितों का हम ध्यान रखेंगे। तो ये सभी बातें जो हैं वो वृद्ध साहित्यकारों पर कटाक्ष कर रही हैं, क्योंकि साहित्यकार को हमेशा रॉयल्टी से बहुत प्रेम रहता है और बहुत परेशान रहते हैं वो रॉयल्टी के लिए, और उन्हें इस बात की बहुत लालसा होती है कि उनकी रचनाएं जो हैं वो विभिन्न स्कूलों के या कॉलेजों के जो पाठ्यक्रम हैं उनमें रखी जाएं। तो इस बात का जो उनको इस बात की जो उनको लालसा रहती है उसके बारे में यहाँ पर कटाक्ष किया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो इसकी भाषा शैली है वो बहुत ही व्यंग्यात्मक है। व्यंग्यात्मक शैली तो पूरे पाठ में ही है, संवाद हैं, संवाद छोटे छोटे हैं, शब्द और जो वाक्य रचना है वो बिल्कुल स्पष्ट है, सीधी सादी है, आपको समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं आती, और आपको व्यंग्य को पहचानने में भी कहीं पर भी दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा लेखक ने स्थान जगह जगह पर मुहावरों का सटीक प्रयोग किया है, जैसे आनाकानी करना, ठीक करना, ऊंचा सुनना। आनाकानी करने का मतलब क्या होगा कि जैसे रॉयल्टी देने में आनाकानी करना, यानी वो थोड़ा सा टाल मटोल कर देना। हम जैसे वो कहते हैं कि अगर किसी ने रॉयल्टी देने अगर किसी प्रकाशक ने धन देने में आनाकानी की तो हम उसे ठीक कर देंगे, तो ठीक करना भी यहाँ पर मुहावरा बन गया है, क्योंकि इसका सही अर्थ यह आ रहा है कि बलपूर्वक हम काम करवा लेंगे, हम जब जबरदस्ती से हम काम करवा लेते हैं तो उसे ठीक कर देंगे हम। ऊंचा सुनना, हम बहुत बार बोलते हैं कि फला फला व्यक्ति ऊंचा सुनता है, यानी उसे कम सुनाई देता है। और जैसे खाने खेलने देना, यानी जो जीवन का आनंद ले रहा है, खा रहा है, खेल रहा है, जीवन का आनंद ले रहा है, उसे लेने देना। तो इस तरह से मुहावरों का भी बहुत ही सटीक प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अब हम कुछ शब्द शक्ति देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति का इस्तेमाल अधिक हुआ है। तो हमने, आपको शायद ध्यान होगा कि हमने अपने पिछले कार्यक्रम में भी शब्द शक्तियों के बारे में चर्चा की थी, जहाँ पर तीन शब्द शक्तियाँ मुख्य रूप से होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जब किसी भी बात को सीधे साधे शब्दों में कहा जाता है और जो शब्द हैं वो प्रचलित अर्थ ही व्यक्त करते हैं, तब अभिधा शब्द शक्ति होती है। अगर हम कहते हैं किसी भी वस्तु को लेकर अगर उसकी जो विशेषता है उसे अभिव्यक्त करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, तब हम कहते हैं कि वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होगी। जैसे हम कहते हैं कि आज तो सुबह सुबह चांद देख लिया, तो हम जिस व्यक्ति से ये बात कह रहे हैं हमें उसका चेहरा प्रिय लग रहा है, इसलिए हमने उसे चांद कहा, खूबसूरत कहा, तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति हो जाती है। तो तीसरी जो शब्द शक्ति होती है वो हमारी व्यंजना होती है। व्यंजना का अर्थ क्या है? विशेष प्रकार का अर्थ। जिस तरह की परिस्थिति होगी, जिस तरह की स्थिति होगी, ये अर्थ उसी तरह का अभिव्यक्त करेगा। तो यहाँ इस व्यंग्य में सबसे अधिक व्यंजना शब्द शक्ति का इस्तेमाल हुआ है। और सबसे व्यंजना शब्द शक्ति के बगैर व्यंग्य लिखा ही नहीं जा सकता। तो इस बारे में आप सही ढंग से, मुझे लगता है कि आप भी समझ गए होंगे कि जहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली है, व्यंग्य रचना है, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति का सर्वाधिक उपयोग हुआ है। तो इस तरह से ये हमारा पाठ है। और अगर आप हरिशंकर परसाई जी के और पाठों के बारे में और रचनाओं के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो आप, बहुत सारे प्रकाशकों की पुस्तकें हैं, आप पढ़ सकते हैं। और इन्होंने, इनकी परसाई रचनावली है, उसमें इनकी बहुत सारी व्यंग्य रचनाएं दी गई हैं। आप अपने किसी सार्वजनिक पुस्तकालय से या अगर आपके कोई साहित्यकार मित्र हो उनके पास अगर इस तरह की रचनावली मिलती है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे सार्वजनिक जो पुस्तकालय हैं उनमें आपको परसाई जी की रचनावली ज़रूर मिल जाएगी, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। इसमें रानी नागफनी की कहानी है, सदाचार का ताबीज़ है, वैष्णव की फिसलन है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र है, और एक और व्यंग्य रचना है इनकी, शिकायत मुझे भी है, ये भी बहुत अच्छी इनकी व्यंग्य रचना है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। जो ये परसाई रचनावली है ये 6 खंडों में बटी हुई है, और इसे अगर आपको ये पाठ बहुत ही रोचक लगा और आप और अधिक व्यंग्य रचनाओं के बारे में जानना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये रचनावली ज़रूर पढ़िए। तो इस तरह से जो आज हमने ये पाठ पढ़ा है, इसको हम एक बार पुनः कुछ पंक्तियों में दोहरा लेते हैं कि ये जो पाठ है ये एक व्यंग्य रचना है, ये हमें स्पष्ट हो गया है। जो साहित्य के क्षेत्र के जो वृद्ध हैं और युवक हैं, यानी जो पुरानी पीढ़ी है और जो नई पीढ़ी है, उसके अंतर संघर्ष, आपसी संघर्ष को स्पष्ट करती है। तो ये एक व्यंग्य रचना है और व्यंग्य में शब्दों के माध्यम से प्रभाव उत्पन्न किया जाता है और ये प्रभाव हमें सोचने के लिए उकसाता है, मजबूर करता है। और व्यंग्य में विचार जो होते हैं वो बहुत ही गहन होते हैं, बहुत ही गहराई होती है, और इस व्यंग्य को आप अंग्रेजी में सटायर कह सकते हैं और कटाक्ष कह सकते हैं या उर्दू में तंज कह सकते हैं। अगर व्यंग्य में प्रभाव उत्पन्न करना हो तो मुहावरे और व्यंग्योक्तियों का बहुत महत्व होता है। तो आपने भी देखा होगा कि इस व्यंग्य में इस पाठ में बहुत सारे मुहावरों का भी इस्तेमाल हुआ है और इससे इस व्यंग्य की जो भाषा है वो बहुत अधिक प्रभावशाली और बहुत ही सटीक और बहुत ही पैनी बन गई है। पाठ में हमारे इस पाठ में छोटे छोटे वाक्य हैं और संवादों के रूप में ये वाक्य दिए गए हैं और शैली हमारी व्यंग्यात्मक रूप में है। भाषा बहुत ही सरल है, मुहावरों का बिल्कुल सटीक इस्तेमाल किया गया है, कहीं भी बिना आवश्यकता के मुहावरों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और इस पाठ में दो पीढ़ियों का जो संघर्ष है वो दिखाया गया है।